विनीत ने मासूमियत से कहा, तुम्हारी बीवी मतलब मेरी दोस्त के गले मिल रहा था। ये सुनकर आयांश उसे आंखें दिखाने लगा। विनीत ने उसके कान पकड़ के हुए कहा, सॉरी अब ऐसे मत देखो, इतना जलने की जरूरत नहीं है जाने मन, ये सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। और हाँ, नहीं लग रहा तुम्हारी जान के गले पर, मैं अपनी जाने मन के तो लग सकता हूँ ना, वैसे भी हमेशा मैं ही लगता हूँ, कौन सा खुद लगाते हो, चलो आज भी लगने दो। कहते हुए विनीत ने आयांश को गले लगा लिया। फिर आयांश से अलग होकर उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस जाने मन, खुश होना, भौहें उछकाते हुए। आयांश ने आरवी की तरफ देखते हुए उसका हाथ फिर थाम लिया और विनीत की ओर देखकर पलके झपका दी। विनीत ने आरवी से कहा, आरवी देखा तुमने, ये कितना पॉजिटिव है तुम्हारे लेकर। आरवी ने हंसते हुए कहा, पॉजिटिव नहीं, टू मच पॉजिटिव। इस बात पर सब हंस पड़े। आयांश सबकी ओर देखते हुए आरवी की ओर देखा, जो छोटी आंखें करके मासूमियत से उसकी ओर देख रही थी। ये देखकर आयांश भी मुस्कुरा दिया। तभी विनीत बोला, अब जल्दी से बताओ ये सब हुआ कैसे, क्या हुआ आरवी जो तुमने अपना डिसीजन बदल लिया। तभी आयांश ने विनीत को साइड करते हुए कहा, हटो, अंदर जाने दो हमें। इतना कहकर आयांश आरवी का हाथ पकड़ अंदर की तरफ कदम बढ़ाता है कि दिनकर जी बोले, रुको। ये सुनकर सब उनकी तरफ देखने लगे। दिनकर जी ने राधे से कहा, राधे जाओ आरती की थाली लेकर आओ, आज हमारी पोता बहू अपनी मर्जी से हमारे घर में आ रही हैं, वो भी हमारे पोते का हाथ थामकर और उसे अपनाकर, गृह प्रवेश तो होना ही चाहिए। सब मुस्कुरा दिए। अभी लाया मालिक, कहकर राधे वहां से भागते हुए चला गया। आयांश दिनकर जी की तरफ बिना किसी भाव के देखता है, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था। दिनकर जी बोले, एक रस्म तो करने दो अंशु, और हमारे मन का भी तो कुछ होना चाहिए ना, आप पर हमारा भी हक है, पोते हो आप हमारे, और आरवी हमारी पोता बहू, इस घर की लक्ष्मी, तो हम अच्छे से स्वागत करना चाहते हैं आरवी का। आपने शादी की थी तब ये रस्म नहीं हुई थी, और होती भी नहीं, क्योंकि उस वक्त आरवी की मर्जी नहीं थी, बेहोशी की हालत में उसे अंदर लाया गया था, और दूसरी बार भी जब आरवी आई तो अकेली ही आई थी। आज साथ खड़े हो दोनों घर की चौखट पर, और मर्जी भी शामिल है दोनों की, गृह प्रवेश की रस्म के बाद ही तुम दोनों अंदर आओगे। आरवी आयांश और दिनकर जी दोनों की तरफ बारी बारी से देख रही थी। दिनकर जी के चुप होते ही आयांश कुछ कहने को हुआ कि आरवी बोली, वाह, गृह प्रवेश की रस्म, सही कहा दादाजी आपने, स्वागत होना तो बनता है हमारा, ये पहली बार ही तो है जब हम अपने पति के साथ घर में कदम रख रहे हैं, वरना आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं, हमारे ससुराल में एक भी रस्म नहीं हुई हमारी, एक तो होने दीजिए प्लीज मिस्टर मेहरा, मासूमियत से। ये सुनकर आयांश सबकी तरफ देखता है, जो उम्मीद भरी नज़र से उसकी ओर देख रहे थे। आयांश ने हाँ में सिर हिला दिया और सब मुस्कुरा दिए। आरवी ने तभी दिनकर जी की तरफ देखकर पलके झपका दी और दिनकर जी ने अपना सिर हिला दिया। आयांश दोनों की नज़रों को फॉलो करते हुए हाँ में सिर हिलाता है। तभी राधे आरती की थाली और चावल से भरा कलश ले आया। मालिक ले आए हम ये सब, राधे दिनकर जी के पास आकर बोला। दिनकर जी ने वर्तिका से कहा, वर्तिका जाओ स्वागत करो हमारी गृहलक्ष्मी का। वर्तिका मुस्कुराते हुए बोली, जी दादू, कहकर वर्तिका ने राधे के हाथ से आरती की थाली और कलश लिया और आयांश और आरवी की तरफ चली आई। विनीत ने उसके हाथ से कलश लेकर आरवी के पैर के पास रख दिया, दाएं पैर से गिराना इसे। आरवी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आपको बड़ा पता है विनीत जी। विनीत ने गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, जानकारी जुटा कर रखनी चाहिए, क्या पता कब काम आ जाए। वर्तिका हंसते हुए बोली, इसे सब पता है आरवी, क्या पता इसकी लाइफ में जो लड़की आए उसे पता ना हो इन सब के बारे में, तो वीनू किस काम आएगा, इसे बताना पड़ सकता है ना, तो पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर रखी है इसने। ये सुनकर सब विनीत पर हंस दिए। विनीत मुंह बनाते हुए बोला, आरती करो आप दी, मेरी टांग खिंचाई बाद में कर लेना, हमें कहानी भी सुननी है इनसे, इनके एक होने की। वर्तिका ने थाली से सिंदूर लेकर आरवी को टीका किया। आयांश की नज़र आरवी पर ही थी। आरवी इस वक्त बहुत खुश नजर आ रही थी। वर्तिका आरवी को तिलक करके आयांश के माथे की तरफ अपना हाथ ले जाती है, तभी आयांश के अपना सिर पीछे कर लिया और चेहरा भी दूसरी तरफ घुमा लिया। ये देखकर सबके चेहरे उतर गए, क्योंकि आयांश तिलक नहीं करवा रहा था। वर्तिका अपना हाथ नीचे करने लगी। तभी आरवी बोली, मुझे लगा दो, एक ही बात है, हस्बैंड वाइफ वैसे भी एक बराबर ही होते हैं, मुस्कुराते हुए, दादी माँ कहती हैं ऐसा। ये सुनकर सबके चेहरों पर फिर मुस्कुराहट आ गई और आयांश की नजरें भी फिर आरवी पर गईं। वर्तिका ने हाँ में सिर हिलाते हुए आरवी को तिलक किया और फिर दोनों की आरती की। तभी आरवी आयांश की तरफ टेढ़ी नजरों से देखते हुए बोली, तुम भी ना वर्तिका, ये सिंदूर है पवित्र चीज,
इतना भी नहीं पता, ये चीजें इंसानी आत्माओं के लिए अच्छी होती हैं, ना कि दूसरी आत्माओं के लिए। उनको बहुत प्रभावित करती हैं, उनकी पावर कम हो जाती है या खत्म इन चीजों के प्रभाव में आने से। और तुम ये सिंदूर डेविल कुमार को लगाने चली, मंद मंद मुस्कुराते हुए। थोड़ा सोच लेना चाहिए ना, खामखा गड़बड़ हो जाएगी। ये सुनकर सब हंस पड़े, पर जैसे ही अयांश ने सबकी तरफ घूरा तो सब हंसी रो के इधर उधर देखने लगे। अयांश आरवी को कुछ कहता कि आरवी ने बतीसी दिखा दी और फट से बोली, आरती हो गई, अब गृह प्रवेश करते हैं हम। इतना कहकर वर्तिका के साइड होते ही आरवी मुस्कुराते हुए कलश को अंदर की तरफ दाएं पैर से गिराती है। सबने ताली बजाई और विनीत वर्तिका मुस्कुराते हुए एक साथ बोले, वेलकम आरवी चतुर्वेदी मेहरा। आरवी ने थैंक्स कहा और अयांश की तरफ देखते हुए बोली, चले मिस्टर मेहरा हमारे घर में। अयांश जो उसे घूर रहा था आरवी के ऐसा कहने पर मुस्कुरा दिया और आरवी को लेकर अंदर आ गया। विनीत वर्तिका भी आ गए। अयांश और आरवी दिनकर जी के सामने खड़े थे। आरवी उनकी ओर देखते हुए बोली, कहा था ना आपसे जाते टाइम आशीर्वाद दीजिए, जो होगा सही ही होगा। बड़ों का आशीर्वाद जब साथ हो गलत कुछ नहीं होता है, और देखिए जो हुआ है वो सही हुआ है, गलत तो बिल्कुल नहीं हुआ। अपने और अयांश का हाथ उनके सामने करते हुए, जो उन्होंने अभी भी पकड़ा हुआ था। ये सुनकर दिनकर जी हाँ में सिर हिला देते हैं और अपनी बाहें फैला देते हैं। अयांश और आरवी दोनों एक साथ उनके सीने से लग जाते हैं। आज दिनकर जी इतने खुश थे कि उनकी खुशी उनकी आंखों से बहने लगी, जो सबकी आंखें नम कर गया। अयांश और आरवी उनसे अलग हुए तो आरवी ने अयांश का हाथ छोड़कर दिनकर जी के दोनों हाथों से आंसू पोंछते हुए कहा, माना कि ये खुशी के आंसू हैं, बट आई हेट टीयर्स माय डियर दादू। दिनकर जी अयांश की तरफ देखते हुए बोले, दादू? आरवी ने उनका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, यस, सब आपको प्यार से दादू कहते हैं, हम भी अब से आपको दादू ही कहेंगे, क्योंकि हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। इतना कहकर आरवी फिर उनके सीने से लग गई। दिनकर जी ने खुश होकर उसका सिर चूमा और अयांश के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, आज मेरे पोते को उसकी खुशी मिल ही गई। अयांश ने उनकी बाहों पर हाथ रखते हुए पलके झपका दी। तभी आरवी दिनकर जी से अलग होकर बोली, अफकोर्स दादू, इनको इनकी खुशी मिल गई, आज बड़े खुश हैं ये, पर क्या कर सकते हैं, अपनी खुशी जाहिर करने में इनको शर्माती है। हाय, कितने शर्मीले हैं मेरे पतिदेव, अयांश के दोनों हाथों से बलाएं लेते हुए। इस बात पर सब हंस दिए। तभी अयांश ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, तो मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? आरवी ने कमर से हाथ टिकाते हुए कहा, क्योंकि हम किसी और के पीछे पड़े, ये बात आपको हजम नहीं होगी।
सब फिर हंस दिए। अयांश ने सबको घूर कर देखा तो सब हंसी रोक इधर उधर देखने लगे। तभी आरवी ने आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा, हम आपके पीछे पड़ गए हैं, आपको रास नहीं आ रहा है तो बता दीजिए, हम कोई और। वो आगे कुछ कहती कि अयांश ने उसे अपने करीब खींच लिया। आरवी के हाथ अयांश के सीने पर जा ठहरे। अयांश ने उसका चेहरा हाथों में भरते हुए कहा, सोचना भी मत किसी और के बारे में। आरवी मुस्कुराते हुए बोली, सोचना भी नहीं चाहते, अब हमें आपसे फुर्सत कहाँ। तभी अयांश ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और सबके सामने अपने सीने से लगा लिया। आरवी भी उसकी बाहों में सिमटते हुए उसकी पीठ पर मुस्कुराते हुए अपनी बाहें कस लेती है। क्रमशः